بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ، آپ کے لیے ہی تعریف ہے جو آپ کی شان کے مناسب ہے، بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے جو آپ کی شان کے مناسب ہو، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کے شایان شان ہو. بے شک اے اللہ، آپ ہی اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے اور آپ مغفرت فرمانے والے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اور اللہ بہت کریم ہے. آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے تھے نیت کرنے پر. عمل کر لے، 10 گنا ثواب، 70 گنا ثواب، اور پہاڑوں کا سا ثواب عطا فرماتے ہیں. غلطی کی، گناہ ہو گیا، اللہ پاک اس کو چھپا لیتے ہیں. فرشتہ لکھنے والا تھوڑی دیر تک قلم اٹھائے رکھتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے تو مجھ کو لکھنا نہیں پڑے، اور لکھیا، توبہ نہیں کی اس وقت تو ایک ہی گناہ لکھا، اور بعد میں توبہ کر لی تو اس کو بھی مٹا لیا اور چھپا دیا. گناہوں پر ستاری فرماتے ہیں اور نیکیوں پر بہت اعزاز و اکرام عطا فرماتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اور نیک عمل کے بہت قدردان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی شکور ہے. زبان ہلانے پر ثواب، اور اچھی نیتوں پر ثواب، دعاؤں پر، ذکر میں، ہر معاملے میں ثواب مل رہے ہیں. ہاتھ پیر سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، دل سے، ہاتھ پیر سے، آدمی نیکیاں کماتا چلا جائے، اللہ پاک کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والا ہونا چاہیے. اس مجلس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان اور ذکر کے فضائل، اور کبھی سنتوں کا سبق، اور گناہ چھوڑنے کی ضرورت، اور دل کی بیماریوں کے علاج، اور آخرت کے حالات، اور ہمارے بزرگوں کے ملفوظات، اور توبہ استغفار کی فضیلت، ان معاملوں میں ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے کیا فرمایا، اس بارے میں بات ہوتی ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہماری مقدس مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ پاک آپ کو بہترین علم نافع عطا فرمائے، اور دین کی بات سننے کے لیے آپ نے جو وقت فارغ فرمایا، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، اولیاء کرام، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. جو آدمی دین سیکھنے جائے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے. اور علم دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. جو لوگ اللہ کے واسطے ایک جگہ ملے اور واپس گئے، اور کوئی غرض نہیں تھی، اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے تھے اور دین کی بات سننے کے لیے کان لگائے، تو ایسے لوگ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے. اللہ پاک ہمیں، آپ کو یہ سارے فضائل برکات عطا فرما دے. امت کے ہر بھائی بہن، چھوٹے بڑے، کہاں رہتے ہوں، کون سی زبان بولتے ہوں، ہر ایک امتی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجیے. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ کے اولیاء بن جائیں، شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہمارے پوری زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب آئیڈیل ہو جائیں، غفلت اور سستی دور ہو جائے، ہر وقت دعائیں، ذکر، اچھی باتیں ہمارے دل میں ہوں، اور زندگی صراط مستقیم پر آ جائے، اللہ کی باتیں ہماری طبیعت بن جائے، سیکنڈ نیچر، بغیر دلیل کے ہم اللہ کی باتیں سنتے جائیں اور زندگی میں لاتے جائیں، ہمارا چلنا پھرنا قرآن اور حدیث کی کاپی بن جائے، اور نیکی پھیلانے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، ساری امت کی خیر خواہی آ جائے، اپنے رشتہ دار، پاس پڑوس، علاقے، شہر، ملک، और सारी उम्मत और सारी मखलूक के लिए वेल विशर होना, सबकी भलाई चाहना, हमारी दुनिया हयात तय्यबा बन जाए, पाकीज़ा ज़िंदगी, सेहत सलामती, चैन, उम्दा रिस्क और दुआओं की कबूलियत, दिल का चैन और आखरत में आसान हिसाब मिल जाए, कब्र जन्नत का बाग बन जाए और पुल सिरात पर से आसानी से जाना नसीब हो जाए और मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में हमेशा रहना नसीब हो जाए, अल्लाह पाक का दीदार नसीब हो जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए। ये सारी नियतें अपने लिए भी करें और अब पूरे आलम के इंसानों के लिए करें, अल्लाह पाक हिदायत के फैसले फरमाएं। और इसमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो है तवज्जो, तलब, शौक, डिज़ायर। आदमी शौक से बैठे, अगरचा पढ़ने वाले की कोई हकीकत नहीं, लेकिन जिनकी बातें पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, बुजुर्गों की बातें, तो उनमें बड़ी बड़ा नूर है। इसलिए पढ़ने वाला, फोन, सुनना, आवाज़, ये सब वास्ता है, देने वाले अल्लाह ताला हैं। जिस आदमी के दिल में जितनी तलब और शौक होगी, अल्लाह पाक उसको अता फरमा देंगे, अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। जैसे एक प्यासा बेताब होता है, उसको पानी चाहिए, इस तरह रूहानी तरबियत और आखरत की कमाई और दुनिया के इत्मीनान चैन के लिए दीन का सुनना ऐसा ही है कि पानी की तलाश में दौड़ा जा रहा है। और फरमाया बुजुर्गों ने कि असल चीज प्यास और तलब का पैदा करना है, पानी तो मिल ही जाएगा, पानी मिल ही जाएगा, अपने अंदर वो सिफत लाएं, शौक पैदा करें। अल्लाह पाक बहुत कदरदान है। हम अपने अमल पर नजर करें तो कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर नजर करें तो पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हमारे बुजुर्ग हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब हरम शरीफ में बैठे थे, ये उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ हैं, और हरम शरीफ में बैठे दुआ के लिए हाथ उठाए। उस वक्त कुछ नहीं आया जहन में कि अब क्या मांगू दुआ, दिमाग में कोई बात नहीं आई। तो फिर उनके जहन में आया कि अरे बेवकूफ़, तूने जिस मालिक के दरबार में हाथ उठाए हैं तो सारी कायनात, सारी दुनिया तुम्हारे हाथ के नीचे है, हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी अल्लाह के दरबार। तो अल्लाह पाक बहुत कदरदान है। इल्म दीन सीखने वाले सन, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हदीस शरीफ पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ, और जो दीन की बातें सुनते सीखते सिखाते हैं, उनको याद रखने, दोहराने के लिए, हाफ़िज़े के लिए, इल्म बढ़ाने के लिए कुछ दुआएं, बाज़ दुआएं तो बहुत मारूफ हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में और कायनात में अल्लाह पाक ने जो भेजा, सबसे बड़े आलिम, स्कॉलर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फरमाया कि आप ऐसा दुआ कीजिए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। सबसे बड़े आलिम को कह रहे हैं कि ये दुआ मांगा कीजिए, तो हम आपके इस कतार में हैं। एक दुआ है जो फरिश्तों की दुआ है, सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनको सुबह शाम कोई 7 मरतबा ये दुआ पढ़ ली जाए, सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। और एक दुआ है जो सूरह ताहा में आई, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। और एक दुआ सूरह इसरा में आई, सूरह बनी इसराइल में, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिदकियों व अखरिजनी मुखरज सिदकियों व जअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हमारे शुयूख फरमाते हैं कि कोई अहम काम करने से पहले, पढ़ाई से पहले, सबक से पहले ये दुआ पढ़ी जाए। और इसके अलावा और भी दुआएं बताई बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात से, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़हमन नबीयीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल इल्म वल फ़हम वल अक़्ल वल हिकमा या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र। तो दुआएं पढ़ के, इस्तिग़फ़ार पढ़ के, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होके और उसको सीखने के लिए बैठे। कुरान पाक इतना बड़ा मोजज़ा है, 1400 साल से चला आता है इतना बड़ा मोजज़ा। तफसीर उस्मानी के मुअल्लिफ मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आज से 90 साल पहले दारुल उलूम देवबंद में दर्स दिया करते थे, उनकी मजलिसें होती थी हजरत की। उसमें हजरत ने कुरान पाक के करामात और मोजज़े और एजाजुल कुरान पर एक तकरीर फरमाई, उसको पूरी किताबी शक्ल में लिखा गया एजाजुल कुरान। तो उसमें एक दो सफ़े पढ़कर अभी बताया जाएगा, आप गौर कीजिएगा कि कितनी कुरान में अल्लाह पाक ने क्या क्या सिफात रखी। हजरत ने फरमाया कि मौलाना फिरोजुद्दीन साहब के हवाले से उन्होंने एक बात लिखी कि कलाम इलाही का खासा है कि इसमें खालिक कायनात की तमाम सिफात कामला बड़ी शान व शौकत के साथ जलवागर होती हैं, और अल्लाह की अजमत और शान ऐसे तौर से जिक्र होती है कि दुनिया की कोई किताब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बात बात में अल्लाह की शान चमकती है, और अल्लाह की रबूबियत, खालिकियत, रहमानियत, कुद्दूसियत आला तौर से जलवागर होती है। जगह जगह अल्लाह का जिक्र और नाम इस कसरत से आता है कि कोई सफ़ा उल्टाओ, कहीं से पढ़ो, उसमें अल्लाह का नाम आएगा। और कुरान पाक सिर्फ दुआ की किताब नहीं है, बल्कि उसमें तमाम मामलात दीनी और दुनियावी और कवानीन और लॉज, मुल्क चलाने के तरीक़े, हर चीज़ बताया गया, हर चीज़ बताया गया। यानी सज़ा देने का तरीक़ा, ख़ानदानी मामलात, पैसों के मामलात, बड़े बड़े यानी मजामीन बयान किए गए। लेकिन उसमें ऐसी जगहों और ऐसे मामलात में भी जहां इंसान से सख्त दुश्वार है कि अल्लाह का नाम ला सके इन बातों में, वहां पर अल्लाह का लफ्ज़ हज़ारों मरतबा आया कुरान शरीफ, और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह हज़ारों दफ़ा आया। कंप्यूटर लेके सर्च कर लीजिए कितनी दफ़ा आया, और उसके बाकी अस्माए हुस्ना का कोई शुमार नहीं, जो अल्लाह के 99 नाम है और दूसरे नाम है कि कुरान में कहाँ कहाँ कितनी दफ़ा आते हैं। फिर उसके अलावा अरबी की जो ज़मीरें हैं, हुआ आया, और अरबी की कितनी ज़मीरें हैं कि अल्लाह वो है, तो वो उनकी गिनती अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। तो हजरत फरमाते हैं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने इसमें लिखा मौलाना फिरोजुद्दीन साहब के हवाले से, ये तस्बीह और तहलील और दुआ वगैरह के मौके पर तो अल्लाह का नाम आ ही जाता है, सब जानते हैं, लेकिन मामलात और ताज़ीरात यानी सजा देने के वक्त में किस तरह अल्लाह का नाम आया है, ये सिर्फ कुरान की खसूसियत है कि कोई सफा और कोई हिस्सा अल्लाह की याद से और अल्लाह के नाम से खाली नहीं। हर जगह अल्लाह का जिक्र बीच में जरूर आ जाएगा, और न सिर्फ ये कि दीनी अहकाम और शरीयत से आदमी को आगाही और सीखता है, बल्कि कलाम रब्बानी सारा का सारा याद इलाही से भरा हुआ है। सफ़े पलटते जाओ, अल्लाह का नाम बार बार पढ़ते जाओ, और यही वजह है कि तिलावत में भी बहुत सवाब है, क्योंकि बार बार ये विर्द हो रहा है और वजीफा हो रहा है, मुकद्दस किताब है, अल्लाह का नाम आ रहा है। अब इतनी तमहीद के बाद हजरत ने एक मिसाल रखी है, जो कि जो लोग दावत देते हैं दूसरों को किसी को समझाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त मिसाल। कुरान पाक में एक सूरे है, सूरे तलाक उसका नाम ही है, और उसके नाम से तो मालूम हुआ कि इसमें कोई ख़ानदानी मामलात के, जहाँ पर जो है अगर किसी घर में इस तरह अलहदगी का मामला पेश आ गया तो उसकी बारे में हिदायत और अहकाम दिए जाएं। और एक छोटी सी सूरे है, 2 पेज की, 2 पेज की सूरे है ये, लेकिन जब आप उस सूरे को पढ़ेंगे तो उसमें इबरत के मजमून है, वाज का मजमून है, तज़कीर है, और अल्लाह के मुकद्दस नामों का वजीफा भी है। और इस छोटी सी सूरे में जहाँ खानदानी मामलात और इस तरह का मामला कहीं हो गया तो आदमी समझेगा कि ये तो कोई झगड़ा हो गया, और किसी अदालत में जाए और आदमी से वाकया बयान करे तो घंटों बात करे, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लेगा, शिकायत करेगा, अल्लाह का नाम नहीं लेगा। लेकिन जब इस सूरे को अल्लाह पाक ने इसमें नाजिल फरमाया तो क्या हुआ कि आम आदमी अगर ये बातें बयान करता, लॉज और कवानीन, तो कहीं पर अल्लाह का नाम नहीं लाता, लेकिन अल्लाह पाक ने इस सूरे के अंदर और इतनी अहम जगह पर जहाँ मोटे मोटे कवानीन बयान किए जा रहे हैं, वहाँ पर लफ्ज़ रब 2 मरतबा आया इस सूरे में, और लफ्ज़ अल्लाह 25 मरतबा आया। लफ्ज अल्लाह 25 टाइम्स आया इस सूरे में, जहां पर के सिर्फ लॉज वो बयान कर रहे थे, उसके साथ साथ इबरत और वाज और नसीहत के मजामीन इतने बयान किए। ये है कुरान शरीफ की शान, ये है कुरान शरीफ की शान कि आप किसी गैर मुस्लिम को बताओ और सिखाओ कि ऐसे टॉपिक भी जब आते हैं तो उसमें अल्लाह का नाम तो 25 दफा कहीं नहीं गया। आप सूरे नूर की आया नूर खोलो, अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, एक रुकू है, आप काउंट करो कितनी दफा अल्लाह आया। अब आयतल कुर्सी लो, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह का नाम इतनी मरतबा आया और जितनी जमीरें और उसमें प्रोनाउंस जितने इशारों से अल्लाह की तरफ आया, आप काउंट करते जाओ, आओ हैरान रह जाओगे। आप कोई सूरह खोलो, सूरह हज का सफा खोलो, अल्लाह अल्लाह, आप देखो कि एक सफ़े में 15 लाइनें होती हैं, और देखो किस तरह लफ्ज अल्लाह मोती की तरह परोया हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और जबरदस्त अरबी के फसीह और बलीग मानी में, जिसको के चैलेंज दिया गया कि ऐ इंसान जिन्नात सारी दुनिया के असबाब जमा कर लो और ऐसी कोई 10 सूरतें ले आओ। फिर कहा गया भाई 10 क्या लाओगे, एक सूरह ले आओ। फिर कहा गया एक सूरह क्या ला सकते हो भाई, ऐसा करो 10 आयतें ही ले आओ। फिर चैलेंज कम करके, अरे भाई एक आयत ही ले आओ, कोई नहीं ला सका, 14 सदियां गुजर गई। कुरान शरीफ का मौजा, कुरान शरीफ का मौजा, अल्लाह अकबर। कुरान में शिफा है, जिक्र है, नसीहत है, दावत है, अंबिया के मजामीन है, और इसका वजीफा होना चाहिए सुबह शाम, और जितना याद कर सके, जितना याद कर सके। हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देखा कि बच्चों की तरह कुरान याद करते हुए चले जा रहे हैं, जैसे बच्चे याद करते हैं, बच्चों की तरह याद करते हुए चले जा रहे हैं, हर वक्त जेब में कुरान रख। ऐसी शान की किताब है, ऐसी शान की किताब। फिर किस्सा बताया गया था कि एक आदमी अनपढ़ था, उसको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन रोजाना कुरान शरीफ खोल के सुबह सुबह बैठ जाता था, और हर सफ़े पर बावजू हर सफ़े पर उंगली फेरता जा रहा है, और कह रहा है अल्लाह साईं ये भी सच बताया, ये आयत भी ठीक है, अल्लाह साईं ये आयत भी सच्ची है, ये आयत भी सच्ची है। इस तरह करके वो अपना मामूल जो पढ़ना होता था चंद सफ़े या सिपारा, वो पूरा कर लेता था, पढ़ना उसको आता नहीं था। इस अमल पे उसको बड़े बड़े दर्जात मिले, इस अमल पे उसको बड़े बड़े दर्जात मिले। अल्लाह अकबर। मौलाना आशिक इलाही साहब हिंदुस्तान में एक बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, दारुलूम देवबंद उनकी सरपरस्ती में चला करता था, खुद उनको कुतुबे रब्बानी आलिम रब्बानी कहा जाता था। तो उनके बारे में लिखते हैं कि सच्चे इल्म का समरा यानी बेनियाज अल्लाह का खौफ और खशियत जैसा हजरत के दिल में था, जमाने की आंखों ने कहीं नहीं देखा। आखिर शब में तकबीर बांधकर अल्लाह के सामने खड़े होते और अल्लाह के सामने अपनी दरख्वास्त अर्ज मारूज शुरू फरमाते, तो आप पर वो हालत नुमाया होती थी जो शहनशाह के दरबार में दाखिल होते वक्त गुलाम पर होनी चाहिए, बादशाह के दरबार में आ गया, और अक्सर बसा औकात आप पर रोना तारी हो जाता, आवाज़ भर्रा जाती, हिचकी बन जाती, तहज्जुद पढ़ रहे, और आंखों से आंसुओं के तार मोतियों की लड़ियां बनकर बहते, सारे बदन पर एक रयाशा यानी एक झुरझुरी एक तारी हो जाती, और शहनशाही फरमान यानी मुकद्दस कुरान की आयतें आप पढ़ते और फिर शुरू फरमाते, फिर ठहर जाते, फिर शुरू फरमाते, फिर ठहर जाते। कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक आयत शरीफा, एक आयत पर आपने सुबह कर दी कि उसको दोहराते रहते दोहराते रहते। देखो तो सहाबा के किस्से तो कितने मारूफ हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ में कितने आते हैं। ये नमूने के तौर पे इस ज़माने की यानी पिछली सदी के एक बुज़ुर्ग इंडिया में उनका हाल बयान किया गया कि वो सिलसिला वहाँ से चला आता है 14 सदियों में बुज़ुर्गों का, एक ये गोल्डन चेन है जिन्होंने उस चीज़ को बाकी रखा। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारूफुल कुरान के मुअल्लिफ, उर्दू में कितनी मशहूर किताब है मारूफुल कुरान, वो मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि इल्म हकीकी की अलामत अल्लाह की खशियत है। तो हर आलिम और तालिब इल्म को बार बार अपना जायज़ा लेना चाहिए कि ये अलामत मेरे अंदर पैदा हुई कि नहीं। मिसाल दी हजरत ने कि मुसाफिर रेलगाड़ी में सवार होकर किसी मंजिल की तरफ चला तो बार बार खिड़की से मुंह निकाल कर देखता है अब कौन सा स्टेशन आया, अब कौन सा स्टेशन आया। तो अगर वही स्टेशन आ रहे हैं जो इस रास्ते में जाते हुए आया करते हैं, तो मुतमईन हो जाता है और स्टेशनों से अंदाजा लगाता है कि असल मंजिल कितनी दूर है। ठीक है, कहीं हैदराबाद जाना था या दिल्ली जाना था, बीच में जो आ रहे हैं वो सब मानूस हैं, मालूम है पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो खुश खुश बैठा रहता है। लेकिन अगर स्टेशन नामानूस आने लगे जो इस रास्ते में पड़ते ही नहीं, तो भाई कहाँ आ गया मैं, किस ट्रेन में बैठ गया, तो समझ जाता है कि गाड़ी किसी और रुख पर जा रही है, गलत ट्रेन में आ गया मैं, और घबरा कर गाड़ी बदलने की फिक्र करता है। इस तरह इल्मे दीन के मुसाफिर को बार बार अपने दिल की खिड़की में झांक कर देखना चाहिए कि खशियत इलाही, अल्लाह के डर का स्टेशन आया कि नहीं आया, अल्लाह के डर का स्टेशन आया कि नहीं आया। अगर कुछ आसार मालूम होते हैं तो सफर सही हो रहा है, लेकिन अगर खशियत और तवाबो और इत्तबाए सुन्नत के बजाय बेफिक्री और तकब्बुर और गुरूर और हुब्बे जाह और माल और नफ्स परस्ती के स्टेशन आ रहे हों, तो समझ लेना चाहिए कि मैं किसी गलत गाड़ी में सवार हूँ, किसी गलत गाड़ी में सवार हूँ, और उसको इल्म की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है। इसीलिए हिजबुल आजम में एक दुआ बहुत मशहूर आती है, अल्लाहुम्म अक्सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीक, ऐ अल्लाह आप हमें अपना खौफ इतना नसीब फरमाइए जिसकी वजह से आप हमारे और हमारी नाफरमानियों के दरमियान हायल हो जाएं, हमारे और हमारे गुनाहों के बीच में ऐ अल्लाह आप आ जाएं, इतना हमें डर अता फरमाइए और इतनी फरमाबरदारी अता फरमाइए कि जिसके सबब आप हमको जन्नत तक पहुंचा दें, और ऐसा यकीन अता फरमाइए जिसकी वजह से आप दुनिया की मुसीबतों का झेलना हम पर आसान फरमा दें। आमीन। खशियत क्या है? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातों अपने दरसे बुखारी में हजरत ने एक जगह फरमाया कि खशियत ये है कि हर काम करने से पहले और हर बात हर बोलने से पहले देखो कि ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, और ये काम मैं अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ कि नहीं। इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही डरते हैं जो अल्लाह की अजमत का इल्म रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि इल्म की पहचान ये है कि अल्लाह का डर आएगा। अब अल्लाह का डर नहीं आया तो ये कि इल्म की भी हकीकत पूरी तरह नहीं आई। हमारे उलमा बुजुर्ग खोल खोल के बयान फरमाते, अल्लाहु अकबर, इमाम अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल बर कुरतुबी उन्दलुसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इल्म दीन और उलमा के फबाइल पर एक किताब लिखी, जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही, और उसको बाद में मुख्तसर किया गया, और यहाँ पर उसका एक किताब में से एक तराशा एक बात दो बातें नकल की जाती है। सुफियान बिन आइनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि लोगों के इल्म का खुलासा, ग्रैंड समरी ऑफ नॉलेज, चार चीज़ों में है। इल्म का खुलासा चार चीज़ों में है। एक ये कि आदमी अपने रब को पहचान ले, अल्लाह को पहचान ले। दूसरी बात यह है कि ये पहचान ले कि रब्बुल आलमीन ने उसके साथ क्या क्या एहसानात फरमाए हैं, ये दूसरा इल्म हुआ। तीसरा इल्म ये हुआ कि ये पहचान ले कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। अब इसमें आ गया सारा हलाल हराम फिक और आलम दीन और कोर्स और पूरे 10-20 साल की मेहनत सीखो कि अल्लाह पाक मुझसे क्या चाहता है, और ये पहचान लो कि किन बातों से वो अल्लाह की नाफरमानी से निकल सकता है, कौन सी बातें हराम हैं, मकरूहात हैं, मुनकरात हैं, नहीं करनी है, मेरा महबूब नाराज हो जाएगा, ये बातें सीख लो, ये इल्म है। अल्लाह, उलमा में ये बात मनकूल है कि कोई आदमी उस वक्त तक सही मानों में आलिम कहलाने के लायक नहीं जब तक उसमें तीन सिफात ना हो। इल्म और नॉलेज में अपने से कमतर को हकीर ना समझे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, मैंने ज़्यादा पढ़ा है, मुझे बहुत आता, दूसरे को हकीर ना समझे, और अपने से ऊंचे वाले से हसद ना करे, जेलसी, अरे ये अच्छा नहीं है, अपने से छोटे से की हकारत ना हो, और अपने से बड़े से हसद ना करे, और नंबर तीन अपने इल्म पर कोई कीमत ना ले, इल्म पर कोई कीमत ना ले, इल्म सिखाए इल्म को बेचे नहीं। सूरह आले इमरान में एक आयत है, उसमें रासिखीन फिल इल्म और रासिखून फिल इल्म, उनका जिक्र आता है। फरमाया कि रुसूख फिल इल्म की तीन चार निशानियां हैं, अपने और अल्लाह के दरमियान तकवा अख्तियार कर ले, बंदा अपने और अल्लाह के दरमियान तकवा अख्तियार कर ले, और अपने और दूसरे लोगों मखलूक के दरमियान तवाजो अख्तियार कर ले, हम्बल, और अपने और दुनिया के दरमियान जुहद अख्तियार कर ले, जो अल्लाह ने दिया उस पर क़नात करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत दिया, और अपने नफ्स के दरमियान मुजाहदा अख्तियार कर ले, खूब अपनी कुर्बानी मशक्क़त से जो दीन की बातें हैं उन पर जम जाए, अपने और अल्लाह के दरमियान तकवा अख्तियार कर ले, अपने और दूसरे लोगों के दरमियान तवाज़ो अख्तियार कर ले, हम बताएं, और अपने और दुनिया के दरमियान जुहद अख्तियार कर ले, और अपने और नफ्स के दरमियान मुजाहदा अख्तियार कर ले। अब देखो, जिन लोगों ने दीन में मेहनत की, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, और उन्होंने औलिया अल्लाह का मुकाम हासिल किया, तो अल्लाह पाक ने कैसा उनसे काम लिया और मखलूक को उनसे कैसा फ़ायदा हुआ, और वो ऐसे लोग थे कि जो बड़े बड़े बादशाहों को भी खातिर में नहीं लाते थे, बादशाहों को भी खातिर में नहीं लाते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पहुंचे और अल्लाह पाक ने उनसे दीन का काम लिया, तो दिल्ली के तख्त पर बादशाह आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक बादशाह आया और हर बादशाह आके इन बुजुर्ग से मुलाकात करने का सोचता अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन ये बुजुर्ग इनकार कर देते कि मुझको बादशाह से नहीं मिलना, तुम बादशाहत करो, हमको तुमसे नहीं मिलना। तो बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी आए, कई बार मुलाकात की इजाज़त मांगी, हजरत मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। हजरत ने इनकार फरमाने, बादशाह को आने की इजाज़त नहीं। दूसरे सुल्तान आए, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। तीसरे आए अताउद्दीन खिलजी, उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। गरीबों को, आवाम को तो हर वक्त आने की इजाज़त है, बादशाह को आने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि ऐसा हुआ कि बादशाह जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत चाहा, बड़ी तदबीर लगाई, किसी तरह पहुंच जाऊं और बुजुर्ग से मिल लूं। उसने अमीर खुसरो के जरिए मुलाकात की तरतीब बनाई। अमीर खुसरो ने जाकर हजरत को बता दिया निजामुद्दीन को कि बादशाह बस अब आया ही चाहता है, तो वह अपनी खानकाह छोड़कर पाक फतन अपने शेख के पास चले गए। बादशाह ने बुलाया वजीर को, बहुत डांटा, तुमने क्यों बताया? तो उसने कहा कि हजरत, आप अगर नाराज हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर निजामुद्दीन नाराज हो गए तो मेरा ईमान जाने का खतरा है, आपकी बात नहीं मानूंगा, बुजुर्ग की मानूंगा। तो ऐसे अल्लाह ने ऐसे मुकाम पे पहुंचाया। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौस आजम, उनको पीराने पीर कहते हैं, हजरत की बातों में ऐसी तासीर थी जिसको सुनने के बाद आदमी में ईमानी जिंदगी पैदा हो जाती। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने शेख कयानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया, ये किताब है अजीम माओं की अजीम औलादें, ये एक बहन ने ये किताब कंपाइल की है, अहलिया मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी, और ये उस्ताद हदीस हैं मदरसा खुनसा दिलबिनात। उन्होंने लिखा कि कोई मजलिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ऐसी ना होती जिसमें यहूदी और ईसाई आके इस्लाम ना कबूल करते हों। मजलिस हो रही है लोगों की और यहूदी ईसाई आकर अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और रहजन, डाकू, खूनी और जरायम पेशा लोग, क्रिमिनल्स आके तौबा ना करते हों। हजरत मुझको तौबा करा दीजिए, आ गए डाकू, आके तौबा करके जा रहे, चोर आके डाकू तौबा करके जा रहे, और गलत अकीदे वाले अपने गलत अकीदे से तौबा ना करते हों, ने हवाला दिया है तबकातुल हनाबिला लिबने रजब। एक मौके पर खुद इरशाद फरमाया हजरत ने कि मेरे हाथ पर 5,000 से ज्यादा यहूदी और ईसाई मुसलमान हुए, और जरायम पेशा लोगों में से, क्रिमिनल में से 1,00,000 से ज्यादा लोग आके मुझसे तौबा करके गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, 20,000 का मजमा वाज में होता था। देखो, ना लाउड स्पीकर है, ना एयर कंडीशन है, ना आज की तरह की मस्जिदें हैं, ना चीजें हैं, 20-20 हज़ार का मजमा, आप सोचो कि आवाज कैसे पहुंचाई जाती होगी, लोग उसको बार बार दोहराते होंगे हर 10 सफ 20 सफ के बाद, हजरत ने ये फरमाया, हजरत ने ये फरमाया। और उसमें अमीर वजीर फकरा औलिया सब आके बैठते, सब आके बैठते। देखो जब आदमी अपने दिल की दुनिया दुरुस्त कर लेता है, अकायद मामलात माशरत, अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह पाक ऐसे ऐसे काम लेते, ऐसे ऐसे काम लेते हैं कि बयान से बाहर है। आज की मजलिस में इस चीज़ के बारे में ज़रा खुल के बयान किया जाएगा। पहली बात यह है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और हर मिनट ऐसा है गोया सोने का सिक्का, और हर मिनट एक दौड़ है कि जन्नत में ऊपर से ऊपर जाओ, अल्लाह के महबूब बनो। और हर लम्हे हर आन अल्लाह की हजारों नेमतें बरस रही हैं। आदमी काउंट करना चाहे, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतें बरकतें रहमतें, तो तुम काउंट नहीं कर सकते। और अल्लाह पाक ने नेकियों की दौड़ का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, तिजारतल लन तबूर, ऐसी तिजारत जिसमें घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, दौड़ो दौड़ो। और एक सेल लगी हुई है अच्छे अमल की, सेल लगी हुई है, और जन्नत के इतने दरवाजे खुले हुए हैं, एक दरवाज़ा पकड़ के मेहनत करो, दावत खिदमत इबादत तालीम तबलीग तदरीस तसनीफ तस्किया नफ्स जिक्र तिलावत दुआएं तस्बीहात सदका। अब उसमें पहली चीज़ तो इल्म है, सीखना भाई अल्लाह पाक क्या चाहते हैं, तो इल्म दीन का एक बाब सीख लेना 1,000 रिकात से अफजल है। और अगर नीयत खालिस हो तो तालिब इल्म जो आदमी दीन सीखना चाहता है उससे अफजल कोई नहीं, नीयत खालिस होनी चाहिए। फिर आया जिक्र, अब जिक्र को फरमाया गया कि वल जिक्रुल्लाह अकबर, इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और बताया गया कि अल्लाह का जिक्र बाकियात सालिहात है, इसमें जिबालुल हसनात है, पहाड़ों का सा सवाब चंद मिनटों में। आदमी के अंदर एक बिलियनेयर की मशीन लगी हुई है जिसकी आदत हो जाए जिक्र की, और दिन रात अल्लाह पाक के यहाँ से बंदे पर सदका होता रहता है, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया। सबसे बड़ा सदका और एहसान ये होता है कि किसी को अपनी याद की तौफीक दे दे, मियाँ तुम हमको याद कर लिया करो, ये हुआ सबसे बड़ा सदका। अल्लाह, आदमी बाजार जाए और चौथा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, चौथा कलमा पढ़ लिया, 10 लाख नहीं किया, मिलियन गुड डीड, मिलियन डॉलर का बिजनेस आ गया, कभी बाजार किसी ज़रूरत की वजह से जाना पड़ा, लेकिन नज़र भी बचानी पड़ेगी, बाजार बहुत फितने की जगह है, ऐसा ना हो कि कुछ नेकियां ज़ाया हो जाए, नेकियां बचाना भी और नेकियां करके आना। कोई दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दीजिए, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को बख्श दीजिए, तो 1 अरब जितने मुसलमान हैं सबकी तादाद के बराबर सवाब मिल गया। हज का ज़माना है, उम्रे का ज़माना है, हरम शरीफ में हाजी पहुंच गया, 1 नमाज हरम शरीफ की 1 लाख नमाज का सवाब। अगर हरम शरीफ में 5 नमाजें जमात से पढ़ ले तो हिसाब लगाओ कि एक आदमी मर्द है 1,000 बरस तक घर में बैठ के नमाज पढ़ता रहा, उतना सवाब को नहीं पहुंचता जितना 1 दिन में हरम शरीफ की नमाज पढ़ के पहुँच, नवाफिल की बात है, फर्ज तो हर जगह ही पढ़ने जहाँ पर भी है भाई, एक ही ज़िंदगी है। अब ये नहीं कि अगली दफ़ा अगर आते अल्लाह पाक तो फिर हम जाते हज को, ऐसा नहीं है भाई, जो जाएगा उसी का फ़ायदा। 1 दिन अगर वहाँ नमाज पढ़ लिया 5, तो घर में बैठ के 1,000 साल तक पढ़ता रहता, उतना सवाब नहीं हुआ, ये मर्दों के वास्ते। अल्लाह अकबर। अब देखो जुमा आता है हर जुमे को, कैलेंडर में फिर आ गया जुमा, अरे जुमे की नमाज को जाना, दफ्तर में बैठे, तो जो आदमी जुमे की नमाज को जल्दी जाएगा, गुसल किया जुमे को, मस्जिद को जल्दी गया, इमाम के करीब बैठा और गौर से खुतबा सुना, गौर से खुतबा सुना, तो हदीस शरीफ में आया मुस्नद अहमद में, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रदी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि इस आदमी को मस्जिद जाते हुए हर कदम पर, हर स्टेप पर 1 साल की क़यामुल लैल और 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। क्या समझे, अपनी मस्जिद को जुमे को जाते हुए ज़रा जल्दी चले गए, सवेरे चले गए, गुसल करके चले गए, ये सब चीज़ों का एहतमाम किया, पैदल गया और जाके गौर से खुतबा सुना, इमाम के बराबर में जाके बैठा। पहले ज़माने में इस पर ऐसा अमल होता था कि अभी लोग समझते हैं जुमा की नमाज 1:30 बजे होती है या 1 बजे होती है, उस वक्त जाएंगे पार्किंग वगैरह देखेंगे। पहले जमाने में लोग सुबह से ही चलते थे, जुमे की तैयारी है, तो जुमेरात के दिन से शुरू हो जाता था कि अब जुमा आ रहा है, तैयारी करनी। और हरम शरीफ में आजकल भी है कि लोग 10 बजे सुबह से जाकर जुमे के लिए बैठे होते हैं। वो होगा 12:30 बजे, लेकिन जो उस वक्त आएगा उसको तो बाहर धूप में बैठना पड़ेगा, उसको मालूम नहीं था धूप में बैठना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी। तो अहमद मुसनद अहमद की रवायत में फरमाया, ये अरबी दान लोगों के लिए, कान लहू बिकुल खुतवतिन यख्तूहा अजरु क़ियाम सनतिन व क़ियामिहा। और अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया, कान लहू बिकुल खुतवतिन अमलु सनतिन अजरु क़ियामिहा व क़ियामिहा। यानी हर कदम पर 1 साल की क़यामुल लैल का सवाब और 1 साल रोज़ा रखने का सवाब। एक जगह मस्जिद में, खानकाह में बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मुहद्दिसीन ने पूरी सहा सित्ता पढ़ ली, उनको ऐसी फजीलत की हदीस कहीं और नजर नहीं आई, ऐसी फजीलत की। तो भाई अल्लाह के जिक्र में और इबादत में ऐसी ऐसी खासियतें हैं, ये एक ट्रैक है, इसको पकड़ के मेहनत करो। और एक तरीका है दावत व तबलीग का, कि नेकियां खुद भी करो और फैलाओ भी। तो वो उम्मुल हसनात है, नेकियों की माँ है, अद्दालु अलल खैर कफाइलिही। देखो, आपने किसी को नेकी की तरगीब दी, उसको समझाया बुझाया, उसको कोई किताब दी, कोई दुआ सिखाई, कोई क्लास ली, उसके लिए दुआ कर दी, अब उस बंदे बंदी का, उन बहन का या उन भाई का जहन बन गया, तो अब वो उन्होंने नेक अमल शुरू किया, तो जितना उनके अकाउंट में आ रहा है उतना आपके पास ही मिल रहा है। और होता क्या है फिर कि बाज लोग दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ उनके घर वाले उनके लिए रोते हैं, दुआएं करते हैं, बाज़ लोग जाते हैं तो पूरा मोहल्ला उनके लिए दुआएं कर रहा है, सारे मोहल्ले की नेकियां उनके पास जा रही, और बाज़ लोग जाते हैं तो पूरा शहर उसके सारे नेकियों का अकाउंट उस आदमी के पास जा रहा है, नामा अमाल बंद नहीं हुआ, मरने के बाद भी आ रही नेकियाँ, सदक़ा जा रही है। और बाज़ लोग जाते हैं तो पूरा मुल्क छोड़कर जाते हैं, पूरा मुल्क दुआएँ कर रहा है। एक ही ज़िंदगी है भाई, इस ट्रैक पर मेहनत करो, ये भी है। अल्लाह अकबर। एक ट्रैक जो है वो ये है कि आदमी अपने दिल पर मेहनत करे, ये औलिया अल्लाह का ट्रैक है, सिद्क, इखलास, तकवा, हया, एहसान। एक गुनाह छोड़ देना, एक गुनाह की आदत छोड़ देना हजारों नवाफिल पढ़ने से बेहतर। और ये ऐसा है कि अल्लाह के दरबार में बहुत बड़ी तनख्वाह पर आदमी लग गया, 8-8 घंटे सब काम करते हैं, एक क्लर्क है वो भी काम करता है, और एक कोई कंपनी का चेयरमैन है वो भी काम करता है, एक की तनख्वाह कुछ है, एक की तनख्वाह कुछ है। तो दीन के मामले में बड़ी तनख्वाह किसकी होगी? तक्वा वालों की। छोटे से अमल पे बड़े बड़े सवाब लेके जा रहे हैं, अमल सभी कर रहे हैं, नमाजें, रोज़ा, जिक्र, अस्कार, तिलावत, लेकिन जो तक्वा वाले हैं उनका सवाब बढ़ा हुआ है। ये बहुत मोटी सी बात है समझने की। वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज्जिम लहू अज्रा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और अल्लाह पाक उसका अजर बहुत बड़ा दे देंगे, इन लार्ज हिज रिवॉर्ड, अल्लाह उसका सवाब बहुत बढ़ा देंगे, बहुत बढ़ा देंगे। देखो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो हाथ पाँव में देखने में बाद में आने वाले लोगों की तरह ही थे, और सहाबा कराम से बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नफली चीज़ें या इबादतें ज़्यादा मनकूल नहीं हैं, लेकिन सहाबा दीन में और आखरत की फ़िक्र में और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी कल्बी कैफियत और एहसान और इखलास जो उनके दिल में था वो इतना बढ़ा हुआ था कि हदीस शरीफ में आया कि अगर मेरे सहाबा में से कोई एक मुट्ठी भर के एक मुद जौ बारले खैरात कर दे, एक गल्ले में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर के बारले खैरात कर दिया, सदका ले जाओ भाई, फकीर को दे दिया, बाद में आने वाले अगर सोने का पहाड़, गोल्ड का पहाड़ भी खैरात कर दें तो सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंचा। तो अब वो क्या बात थी? अब वो बात आ गई दिल की, कल्ब की, कि इस पे, इस ट्रैक पे मेहनत करो, इस चीज पे मेहनत करो। तो ये वजह होती है कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं, आरिफ बिल्ला, बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्गान, उनकी 2 रिकात नमाज ऐसा समझना चाहिए कि ये तो इनको अल्लाह ने लाखों का सवाब दिया, ऐसा फर्क होता है। और अल्लाह के जो औलिया होते हैं, ये बुज़ुर्गों का मकूला है कि उनके साथ थोड़ी देर का एक ज़माने की सोहबत, थोड़ी देर अल्लाह के औलिया की सोबत मिल जाना, एक पीरियड ऑफ टाइम कि कुछ ज़माना उनके साथ रह लिए या बातें सुन ली, उनसे कुछ इस्तफादा हुआ दीनी मामले में, रूहानियत में, तो ये सैकड़ों साल की बेरिया इबादत यानी नवाफिल से बेहतर है। सैकड़ों साल की इबादत बगैर शो ऑफ के करता कहीं जाके अकेले में, उससे बेहतर बताया गया कि किसी बुजुर्ग के साथ अगर कोई अच्छे हैं उनका कुछ वक्त दें तो उनके साथ आप अटैच हो जाए, उनसे दीन की बातें सीखो, बुजुर्गों का मकूला है। अब उसकी वजह भी बताई, बुजुर्गों ने अपनी किताबों में जगह जगह बताई कि अब ये क्या है भाई, इसकी दलील ऐसे कैसा स्टेटमेंट दे दिया। तो फरमाया कि देखो शैतान को तो देखो कि इबादत में बहुत बढ़ा हुआ था, शैतान हजारों साल इबादत किया, जगह जगह जाके सजदे किया और इबादत करता था, वो शैतान आबिद भी था बहुत बड़ा इबादत गुजार, और शैतान आलिम भी था, इस हर चीज जानता था। हत्ता कि जब अल्लाह के दरबार से उसको निकाला जा रहा था रिजेक्ट करके कि निकलो यहाँ से, तो जाते जाते भी मोहलत मांग गया कि अल्लाह कयामत तक मोहलत दे दीजिए कि मैं सबको बहकाऊंगा, इतना बड़ा आलिम था कि अभी जाते हुए भी कुछ डिस्काउंट लेके जा सकता हूँ। और शैतान आरिफ भी था कि अल्लाह को पहचानता था कि अल्लाह पाक इस वक्त मुझे निकाल रहे हैं लेकिन इस वक्त भी मैं ये मांग लूंगा तो मुझको दे देंगे, अल्लाह को खूब पहचानता। कुरान पाक में जब अल्लाह का वो आया कि जब ये गज़वा बदर में बहका के लाया और मुशरिकीन आए और जब मुसलमान भी आए सामने, और जब ऐन जब वक्त आया और फरिश्ते नाजिल होने लगे तो शैतान उल्टे पैर भागा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। शैतान उल्टे पैर भागा, बोला मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। तो शैतान में ये चीजें तो थी कि वो जानता भी था और इबादत भी खूब किया था हजारों साल, अल्लाह को पहचानता भी था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी शैतान में जिससे मारा गया वो। क्या चीज की कमी थी? अल्लाह का आशिक नहीं था, अल्लाह से उसको मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह का आशिक नहीं था। जब अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उस वक्त अकड़ गया, मैं क्यों करूँ, मुझे इतना अच्छा बनाया आग से, इसको ऐसा बनाया, मैं क्यों करूँ। अगर आशिक होता तो बगैर चूं चरा किए भाई अल्लाह कह रहे हैं सजदा कर ले। तो इस वजह से यहाँ से बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि बुजुर्गों की सोहबत से आदमी को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और उससे फायदा ये होता है कि वो मरदूद होने से यानी ईमान जाने से महफूज रह जाता है। हाँ कोई चलो ऊंच नीच गुना थोड़ा बहुत कुछ कोई गलती भी कर दे, वो अपने औलिया अल्लाह मासूम नहीं होते, कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन ईमान नहीं जाता। और ये वो चीज़ है जो यानी शैतान तो मरदूद हो गया सारी चीज़ों के बावजूद, तो बुजुर्गों की सोहबत से ये चीज़ मिलती है कि वो इंशाअल्लाह मरदूद नहीं होता। तो इस वजह से फरमाया कि एक थोड़ी देर उनके साथ रहना 100 बरस की बेरिया इबादत से अच्छा। तो ये ट्रैक है, और उसके साथ फिर खिदमत खल्क का ट्रैक है, मुसलमान की मदद को चलना, 10 साल के इतकाफ का सवाब, और वालदैन पर एक नज़र रहमत, हज और उम्रे का सवाब, और किसी बेवा मिस्कीन और यतीम की मदद को चलना, पूरा क़ियामुल लैल का सवाब कि रात भर आदमी नमाजें पढ़ रहा है, दिन भर रोजे रख रहा है। तो ये भी खुला हुआ है ट्रैक, जिसको खिदमत खल्क का शौक, खिदमत से अल्लाह मिलता है, खिदमत करो। अब हमारे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी मुकद्दस माएँ और बहनें और बेटियाँ, जब जिंदगी इतनी मुख्तसर है और इतने सारे नेक काम खुले हुए हैं और अल्लाह पाक मुंतजिर हैं और अल्लाह करीम है और अल्लाह पहुंचाना चाहते हैं कि इसको पहाड़ों का सा सवाब दो, इसको जो है ऐसे अमाल कर सकता है, कर सकती है कि जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे, तो अब जिंदगी मुख्तसर है, आदमी किस वक्त क्या करे। रोजाना ये सारे गेट खुले हुए हैं, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, आदमी किस वक्त क्या करे, कितना करे, कैसा प्रायोरिटाइज करे, किस चीज़ को तरजीह दे, कभी शैतानी वसवसा आ गया उसको कैसा दूर करे, यहाँ पर ज़रूरत होती है शेख की। आप शेख कह लो, उस्ताद कह लो, मुअल्लिम कह लो, मुरब्बी कह लो, मेंटर कह लो, एडवाइज़र कह लो, किसी दूसरे से मशवरा करके चलने की ज़रूरत पड़ती है, खुद चलोगे गिर जाओगे। होता क्या है कि आदमी की छोटी सी ज़िंदगी है, 15 साल में बालिग हुआ, 20 साल में कोई मसले सीखे चीज़ें, 30 साल बाद एक तजुर्बा हुआ, ओ या अल्लाह अब समझ में आया, 40 साल बाद एक तजुर्बा हुआ, या अल्लाह अब समझ में आया, आइंदा नहीं करूँगा, 50 साल बाद, पूरी ज़िंदगी में 4-5 ही मसले सीखे थे कि फरिश्ता आ गया और ले गया, यानी जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं बस 4-5-10 ही आदमी सीखता है कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बड़ी गलती हो गई। उसका एक बेहतर तरीका है कि किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, शेख, उनकी खिदमत में रह ले और हर बात उनसे पूछा करे और उस पर अमल किया करे, और ये बुजुर्गान हर यानी कोई मस्जिद का इमाम वो शेख नहीं होता, जिस तरह मुहद्दिसीन का सिलसिला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आ रहा है, जैसे आज बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चुश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इंडिया में गुज़िश्ता सदी के ज़माने में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके खुलफा और उनका सिलसिला, फिर हालिया ज़माने में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनका सिलसिला, फिर हज़रत शेख मौलाना हकीम अख्तर साहब दामत बरकातहू उनके सिलसिले पूरे दुनिया में फैले हुए, मौलाना हज़रत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू, तो मशायख होते हैं चोटी के, जो इल्म के अमल के तकवा में अल एहसान में अल्लाह ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तो उस सिलसिले में आदमी दाखिल होकर उनसे राबता करके अपनी बातें बताकर और उसमें तरक्की करे एहसान में, उसमें इस्तखारा किया जाए, उसमें मशवरा किया जाए। तो हजरत फरमाते हैं कि दीन बुजुर्गों की सोहबत से आता है और दीन शौक और तलब से आता है। और एक जगह फरमाया कि अल्लाह के दरबार में नेकियां काउंट नहीं की जाएंगी, गिनती नहीं होगी कितनी नेकियां हैं, वजन किया जाएगा नेकियों का। और यही फरासत था हमारे और सहाबा में, तो नेकियों का वजन किया जाएगा, एक नेकी है लेकिन कितनी वजनी है, इसलिए वो सिफात लाओ आमाले कल्ब की, दिल की सिफात लाओ। अब हर आदमी के अपने अहवाल होते हैं, असबाब, हुकूक, फराइज, किसी काम में लगा है, सेहत अच्छी है नहीं है, उम्र क्या है, क्या तैयारी की जिंदगी में, उसके मुनासबत से शुयूख सारी बात सुनने के बाद, चूंकि वो रूहानी डॉक्टर होते हैं, वो हजारों लोगों को इस तरह पहले ट्रीट कर चुके होते हैं, वो बता देते हैं कि बेटा बेटी आपके हिसाब से इतना वक्त इसको दो, ये काम करो, ये काम मत करो, ये नफ्स और शैतान का धोखा है, इधर मत जाओ, तुम्हारे करने का ये काम, उसको मानकर चलना चाहिए और उनको इत्तला देनी चाहिए। और एक बात यह है कि सारी दुनिया में लोग नेक अमल कर रहे हैं, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई खानकाह बना रहा है, कोई जिक्र में लगा हुआ है, कोई दावत तबलीग कर रहा है, कोई खिदमत खल्क है, कोई जो है खाने पकाकर बांट रहा है, कोई गैर मुस्लिमों में दावत दे रहा है, और सारी दुनिया में ये अमाल होते हैं, ये अल्लाह मियाँ का अखबार है, सुबह आप उठो तो पूरी दुनिया में इतनी मस्जिदें बन गई माशाल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग नए मुसलमान हो गए आज, जापान में और चीन में और कहाँ कहाँ, आप जानते नहीं, लेकिन ये अल्लाह का अखबार है, चल रहा है मामला। लोगों ने लाखों लाख खाने पकाकर बांटे कल, कितने हजार लोगों ने तौबा की कल, और कहाँ जहन्नम में जाने वाले थे लेकिन अब जन्नत में जब पहुंच गए, अल्लाह के यानी अखबार ये खुला हुआ है और इसमें लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग बच्चे आज हाफिज हो गए दुनिया में, कितने लोग आलिम कोर्स पढ़कर फारिग हो गए, कितनी आलिमात दुनिया में आज बन गई, तो ये सब लोग मेरा ही काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि ना हम वहाँ पहुँच सकते हैं ना हम उनके कोई खिदमत कर सकते हैं, लेकिन ये कि दुआ करें सबके लिए, दुआ करें या अल्लाह इन सब लोगों को बरकत दीजिए, रहमत दीजिए, उनके काम बढ़ा दीजिए, तो होगा ये कि जो काम हम नहीं कर सकते उस काम में भी उनकी नेकियों में से कुछ अल्लाह पाक हमें भी अता फरमा देंगे और नेकियों की तौफीक दे देंगे। तो ये चीज़ है बुज़ुर्गों से इस्लाही ताल्लुक़ से ये बात आती है, अच्छे अख्लाक हासिल करना, बुरे अख्लाक दूर करना, और अपनी इसलाह फ़र्ज़ आयन है और आदमी अपनी इसलाह खुद नहीं कर सकता। तो मौलाना हकीम अख्तर साहब ने रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कशकोल मारफत में किताब में एक जगह लिखी शेख की बात कि आदमी अपनी इसलाह खुद नहीं कर सकता, खा वो सड़क पर खड़े होकर अपने सर पर जूते ही मार ले, पब्लिक में खड़े होके कि मैं बहुत बुरा हूँ अपना जूता उठा कर सर पर भी मार ले, उसकी इसलाह खुद से नहीं होगी, किसी और के जरिए से होगी, आदमी की इसलाह किसी और के जरिए से होगी, किसी उस्ताद के जरिए से होगी। अल्लाहु अकबर। इस्लाही ताल्लुक बुजुर्गों से सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के वास्ते होता है, उसमें दुनिया की कोई नीयत ना हो, नफ्स के मजे के लिए ना हो और कोई दुनियावी फायदा ना हो, और दीन सीखने के लिए अदब जरूरी है। देखो बुजुर्गों की नज़र से और उनकी दुआ से दीन में कमाल हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बात सहाबा के लिए, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ कर दी, तो आप रईसुल मुफस्सरीन हो गए, सब मुफस्सरीन के सरदार हो गए। अनस रदी अल्लाह अन्हु छोटे बच्चे थे, खिदमत करते थे, उनके लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ने उनको 100 साल से ऊपर की उम्र दे दी, और उनके बच्चे और पोते और पड़ पोते 100 से ऊपर उनको दे दिए, और उनके बाग में साल में 2 दफ़ा फल आने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत, दुआ की बरकत। अल्लाह हो, कोई मुहद्दिस-ए-ज़माना हो गया, कोई फ़िक़्ह का शहसवार हो गया, कोई मुफस्सरीन का सरदार हो गया, तो बुजुर्गों की सोहबत, उनकी दुआएं बहुत देने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हर चीज का अदब, जो इल्म सीखते हैं, किताब का अदब, कुरान का अदब, अपने बस्ते का, कॉपी किताब का, जिन चीजों से सीखते हैं दीन, उसका अदब। हत्ता के कोई अब ये फोन पर सुन रहा है, तो अब फोन का भी अदब कि इसके वास्ते से मुझे कोई दीन की बात मालूम हो रही है। फिर देखो कि सहाबा के फजाइल कितने थे, लेकिन वो डरते कितने थे, खशियत। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो पहले आज़ाद मुसलमान हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यार गार हैं, और खलीफा अव्वल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में पहलू में दफन है। 14 सदियों से जो सलाम पेश करने जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा मुबारक पर, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सलाम पेश करके आता है। ऐसे बड़े बड़े दर्जात फरमाए कि जन्नत के हर दरवाजे से अबू बकर को बुलाया जाएगा। बताओ, खुतबे में पढ़ा जाता है, अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अम्बिया बितहकीक, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि यानी अम्बिया के बाद पूरे रुए ज़मीन पर जो सबसे अफजल अल्लाह ने कोई आदमी बनाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, खुतबे में पढ़ते। तो इसके बावजूद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जबान खींच रहे थे कि मेरी जबान ने मुझको हलाकत और डिस्ट्रक्शन में डाला है। अपनी जबान को मलामत कर रहे थे कि मेरी जबान ने मुझको हलाकत में डाला है। और कभी कोई सहाबी फरमा रहे हैं कि काश मैं घास होता, ब्लेड ऑफ ग्रास, होता ही ना मैं। और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अबू बकर तुम नमाज के आखिर में, नमाज से फारिग होगे, ये दुआ पढ़ा करो। देखो किसको सिखा रहे हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या दुआ सिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी वलम तो नफ्सी गुलमन कसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी वलम तो नफ्सी गुलमन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर कितना ज्यादा यानी जुल्म कर लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखा रहे हैं, जो अब नमाज में अदब में आता है कि अब नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़ा करो। उमर रदी अल्लाह अन्हो दूसरे खलीफा हैं, और कुरान शरीफ की कई आयतें उमर रदी अल्लाह अन्हो की मंशा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नाजिल हुई। तो आके अर्ज करते हैं कि क्या अच्छा हो कि ये हुक्म आ जाए, तो अल्लाह पाक ने वो हुक्म उतार दिया। इतना बड़ा दर्जा उमर रदी अल्लाह अन्हो, और उमर रदी अल्लाह अन्हो फरमा रहे हैं कि अगर ऐलान हो के सारे इंसान जन्नत में जाएं और एक आदमी जहन्नम में जाएगा, तो मैं डरता हूँ कि कहीं मैं वो ना हो, कहीं मुझे ना पकड़ के डाल दिया। और उम्मीद भी इतनी है, फरमाते हैं कि अगर सारे के सारे इंसान ऐलान हो कि सब लोग तो जहन्नम में जाएं, एक आदमी को जन्नत में डालना है, तो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो आदमी मैं ही हूँगा, होप भी नहीं छोड़ना। ऐसा देखो ये चीज़ हासिल होती है, ये आमाले कल्ब है, दिल की बात हो रही। गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मैदान अरफात में पहुंचे, कंकरियों पर सर रख कर रो रहे थे। मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी साहब ने हज की किताब में लिखा है कहीं, कंकरियों पर सर रख कर रो रहे थे कि ऐ अल्लाह अगर बख्शिश के लायक हूँ तो बख्श दीजिए, अगर बख्शिश के लायक हूँ तो बख्श दीजिए, वरना क़यामत में मुझको नाबीना बगैर आँखों के उठाइए, क़यामत में वरना मुझको नाबीना करके उठाइए। इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि अगर मस्जिद में ऐलान हो कि अरे भाई सबसे बुरा आदमी इस मस्जिद में जो है वो फौरन बाहर आ जाए, तो कहते हैं सबसे पहले मैं निकल के आऊँगा, सबसे पहले मैं निकल के आऊँगा, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में और दोनों तरफ पानी आ गया, बीच में एक चलने की पतली सी जगह थी, पत्थर की जरा ऊंची जगह होती है, तो उस पर जा रहे थे, सामने से एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता भी देख रहा और ये बुजुर्ग भी देख रहे, भाई तू नीचे उतर मैं जाऊंगा, तू नीचे उतर मैं जाऊंगा। तो थोड़ी देर तक तो सोचा, फिर वो बुजुर्ग पानी में उतर गया, कुत्ते को जाने दिया, जा भाई तू ही चला। तो ये चीज होती है जो बुजुर्गों से सीखने की होती। शैतान किस लिए वो रिजेक्ट हुआ कि वो कहने लगा अना खैर उम्मीन, कि मैं इससे अच्छा हूँ, आदम से अच्छा हूँ, यहाँ से मारा गया। जन्नत को नागवारी से घेर दिया गया और जहन्नम को जो ऐसी चीज़ों से घेर दिया जो नफ्स को अच्छी लगती है। अल्लाहु अकबर, एक कदम नफ्स पर और दूसरा कदम कामयाबी। तो बुजुर्गों के पास सिर्फ जिक्र या वजीफा सीखने नहीं जाते, बल्कि अपने नफ्स की इसलाह और इंसान बनने को जाते, इंसान बनने को जाते। खानखा में कहते थे कि भाई तुमको जिक्र सीखना है फलां के पास चले जाओ, ये चीज़ सीखनी है तो उधर चले जाओ, मसला मालूम करना हो तो उनके पास चले जाओ, अगर इंसान बनना हो तो यहाँ। होता क्या है कि जो अल्लाह का आशिक सादिक होता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की करनी होती है, तो वो अपने ऊपर मुकदमा कायम करता है। वो सहाबी निकले हंजला, और ये कहते हुए निकले चले कि अब हंजला मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। उन्होंने देखा कि मेरे दिल में कोई तब्दीली आ गई, तो कहने लगे मैं मुनाफिक हो गया। अब जाके बताया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि नहीं 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 हुए मुनाफिक, अगर तुम ऐसे ही रहते जैसे मेरे पास थे, ऐसी हालत होती घर जाके बीवी बच्चों में भी रहते और दिल की वैसी हालत होती तुम्हारी, तो फरिश्ते आके तुमसे मुसाफा किया करते, फरिश्ते आके हाथ मिला के जाते। तो शेख का काम होता है तसल्ली देना, और शागिर्द का काम है कि अपने ऊपर मुकदमा बनाना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तो बिल्कुल गलत हो गया, और उस्ताद का काम है तसल्ली देना, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह, जिसको जहां से जो होता नजर आ रहा है अल्लाह करने वाले हैं, और हालात से मुतासिर होने के बजाय ईमान और आमाल पर मेहनत करे उससे हालात भी अल्लाह बनाएंगे। ख्वाहिशात की जिंदगी से हुक्मों वाली जिंदगी पर आना, उसके लिए ये बुजुर्गों की बातें बताई जाती हैं, बातें सिखाई जाती हैं। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह, हजरत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शेख थे। हजरत ने फरमाया, मामूलात यौमिया किताब है, हजरत ने फरमाया कभी कोई मुश्किल पेश आए और उसके हल की कोई सूरत या तदबीर समझ में न आए, तो हमारे हजरत यानी हकीमुल उम्मत फरमाते थे कि उसके मुतालिक सोचो मत, बस दिल दिल में दुआ करने लगो और बार बार दिल में पढ़ो इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन। कितनी आसान दुआ बताई, सारे दीन का खुलासा सूरह फातिहा में है और उस सारे का खुलासा इसके अंदर है, इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन, सारा खुलासा आ गया। और कहने लगे ये दुआ बना लो, इसको दिल दिल में पढ़ते रहो तो इंशाल्लाह फिक्र से निजात मिल जाएगी और सुकून हासिल होगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। वो ये होती है शेख की, बुजुर्गों की खासियतें। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं बताया, एक छोटा सा चुटकुला बता दिया कि मियाँ इया का नाबुदू इया का नस्तईन दिल दिल में पढ़ते रहा करो, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। हजरत ने लिखा कि नमाज और जिक्र की हालत में और दूसरे हालात में अक्सर व बेशतर दिल और दिमाग में बुरे और परागंदा और लघ ख्यालात पैदा होते हैं और बहुत खतरनाक और तशवीशनाक वसाविस और खतरात का हुजूम होता है। बाज़ औक़ात यानी अल्लाह बचाए कुफ्र और इल्हाद के खतरात और दीन इस्लाम और उमूर आखरत में शुभहात बदरजा इनकार पैदा होते हैं। कभी नफसानी और शहवानी तकाजे मुतहर्रिक होते हैं, कभी अपनी नाकिस हालत और दुनियावी उमूर में नाकामी से मायूसी पैदा होने लगती है। ये वसवसे आ रहे हैं दिल में, ऐसा क्या हुआ, फेलियर चीज़ें, शैतानी ख्यालात आना शुरू है। हजरत ने फरमाया खूब समझ लेना चाहिए कि ये सब गैर इख्तियारी बातें हैं और महज शैतानी तसर्रुफात हैं। जब तक उनके तकाजे पर अमल ना किया जाए वो काबिल मुआखजा नहीं है और न मर्दूदियत की अलामत है, न ईमान में उससे कमी होती है, न ताल्लुक मअल्लाह में फ़र्क आता है। बल्कि ये बातें कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं जल के कोयला हो जाता बजाय इसके कि मैंने ऐसी गंदी बात सोची। आदमी के दिल में ख्याल आया फिर फौरन कोई नफ्स था, नफ्स लवामा, उसने मलामत की, अरे तुम इतने नेक आदमी ऐसी बातें सोचते, शर्म नहीं आती। तो उस वक्त जो है आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे इससे जो तकलीफ पहुंची उस पर अजर मिलेगा, उस पर भी सवाब मिलेगा। ये ख्याल आया फिर उसको रूह दूर किया, चल हट। इस मौके पर ख्यालात को दूसरी तरफ मुतवज्जा कर दिया जाए, किसी दीनी किताब का मुताला किया जाए या अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाए, चंद बार इस्तिग़फ़ार इस्तआज़ा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह वसवसों से नजात मिल जाएगी। और अगर सारी उम्र भी नजात नहीं मिली वसवसे से तो दुनिया आखरत का हरगिज़ कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है। देखो एक बुजुर्ग ने जो आम लोगों को चीज़ पेश आती है उसको एक चुटकुले में, 2 मिनट के चुटकुले में हल कर दिया कि मैं वसवसे से परेशान नहीं हूँ, ये तो आती, इस्तिग़फ़ार कर लो, अपने काम में लगो। अल्लाह अकबर। हजरत ने एक जगह खुलासा बयान किया जो हकीमुल उम्मत का सबक है, फरमाया वो ज़रा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का वो ये है कि जिस ताअत में, जिस नेकी के काम में और गुड डीड में सुस्ती लगती हो, मालूम तो है बहुत अच्छा काम है वो नहीं रहा, तो जिस नेकी के काम में सुस्ती महसूस हो तो सुस्ती का मुकाबला करके उसको करे, और जिस गुनाह का तकाजा हो तकाजे से मुकाबला करके उस गुनाह से बच जाए। जिसको ये बात हासिल हो गई उसको कुछ ज़रूरत नहीं, यही बात ताल्लुक महल्ला पैदा करने वाली है, यही उसकी महाफिज है और यही उसको बढ़ाने वाली है। सारे तरीक तसव्वुफ का खुलासा बयान कर दिया भाई, जिस काम में सुस्ती होती है लेकिन वो करने का काम है उसको खूब करो जम के, और जो काम नहीं करने का है गुनाह और आपको शौक हो रहा है लेकिन उसको जम जाओ नहीं करो उसको। आखरत की तैयारी में दुनिया में जितने इंसान हैं, अरबों अरब करोड़ा करोड़ कहाँ कहाँ रहते हैं, सारे इंसान खतरे में हैं आखरत की तैयारी में, सवाए उन लोगों के लिए जो आलिमून हैं, जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं समझते हैं। और जितने लोग जानते हैं सारी दुनिया में वो सारे भी सख्त खतरे में हैं, सवाए उन लोगों के जो अमल करते हैं आमिलून। और जो लोग सारी दुनिया में अमल करते हैं वो भी एक तरह के खतरे में हैं, सवाए उन लोगों के जो मुखलिसून हैं 100% अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। और जो लोग मुखलिसून हैं इखलास वाले सिंसियर, वो भी डरते रहते हैं जब तक कि ये मामला तय ना हो जाए क़यामत के मैदान में। तय हो गया, मिल गई नामे अमाल, अब खुश हो, सबको दिखाए, फैमिली को दोस्तों को, देखो मैं ना कहता था इतना अच्छा। लेकिन दुनिया में किसी चीज़ को सेलिब्रेट ना करे, दुनिया में जाए नेकियां भी छुपाए, डर डर के चले, डर डर के चले। आखिरत में जब मामला तय हो जाए अब उसके बाद, शैतान के दाव है कि आदमी को सुस्त और काहिल बनाओ, भाई कोई गुड डीड मत करना, और गुनाह के कामों को सजा के बना के अच्छी पैकिंग में ला के पेश करे कि ये कर लो। अब आदमी ने पहला मरहला है स्ट्रगल के, वो जद्दोजहद की, नहीं मुझे तो ये नेकी का काम करना है और मुझको ये गुनाह से बचना है, तो ये स्टेज पार करके आदमी कुछ काम शुरू किया तो शैतान ने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। अब ये दरवाज़ा है उजुब, गुरूर, तकबुर, नाज, शेखी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इसमें हुब्बे जा, लोगों से अपनी तारीफ चाहना, ये दरवाज़ा खोल दिया। शैतान ने कहा कि आप बहुत स्पेशल हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, तो अब उसको भी नेगेट करना है कि नहीं नहीं ये सब अल्लाह की फजल से हुआ, अल्लाह चाहे तो सब वापस ले लेते, मैंने कुछ नहीं किया। उसमें शुक्र का मकाम है, खूब शुक्र किया करें, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तो उसमें अल्लाह फिर इखलास के मकाम पे आदमी पहुंचेगा, अल्लाह के वास्ते अमल शुरू करेगा। देखो तो इस जगह 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 जो है ज़रूरत पड़ रही है उस्ताद की, शेख की। पहले तो मालूम नहीं था कि क्या अमल करना है और क्या चीज़ छोड़ना है, जब वो पढ़ा सीखा बताया गया अब उस पर जम गए, शैतान ने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया कि आप स्पेशल हो गए, तो उस वक्त भी अपने दिल की बातें शेख को बता के इसलाह कराई जाती कि मैं ऐसा सोचा, ऐसा ख्याल आया, तो इसलाह ऐसे होती आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। अभी वक्त कम था लेकिन इस मामले से मुताल्लिक एक जो है एक वाकया या लतीफ़ा भी बता दिया जाता है, जिससे इतने लोग बैठे होते हैं देर तक तो उनको कोई बात अच्छी तबीयत के मुवाफिक बता दी जाए। तो किस्सा ये हुआ कि एक गाँव में एक कुआँ था पानी का, और उसके अंदर एक कुत्ता गिर के मर गया। तो देहाती सीधे साधे थे, उनको मसला मालूम करना था, तो मस्जिद में पहुंचे बुजुर्ग इमाम साहब के पास कि हज़रत ये कुत्ता गिर गया है कुएं में, तो उन्होंने फ़िका के मुवाफिक बता दिया कि इतने इतने डोल पानी के निकाल के फेंक दो बाहर, पानी पार हो जाएगा। तो वो गए, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन फिर घबराए हुए आए थोड़ी देर के बाद, हजरत पानी इतना निकाल के फेंका लेकिन वैसी बदबू आ रही है कुआं में, तो पानी हम इस्तेमाल के काबिल नहीं पाते। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा पानी है तो इतने इतने डोल निकाल के और फेंक दो। तो देहाती गए और इतने इतने डोल निकाल के उन्होंने फेंक दिए, फिर भी मामला साफ नहीं हुआ, वही बदबू चीज़ें और उनको पानी इस्तेमाल करने की तबीयत में नहीं हो रही। तो फिर आए कई दफ़ा ऐसा हुआ, तो बुजुर्ग ने पूछा कि अरे पहले ये बताओ कि कुएं में से कुत्ता निकाल के फेंका था कि नहीं। तो उन्होंने कहा कुत्ता तो वहीं पड़ा हुआ है, कुत्ता नहीं निकाल के फेंका, हम तो बस पानी के ढोल निकाल निकाल के फेंक रहे। तो ये हाल है, इसको किस्से में बताया जाता है, यानी इसको पोनी स्टोरी कहते हैं, और ये टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। और होता यह है कि आदमी की शख्सियत में और आदात में, नफ्स में रजीले होते हैं, बुरी बातें, तो उनका इलाज किसी एक्सरे से या किसी आले से मालूम नहीं होता, और पहले जो है वो कुत्ता निकाल के फेंकना पड़ता है, उसके बाद इसलाह होती। तो हर आदमी की शख्सियत में वो पोनीज होते हैं कि ये पोनी है, ये है, ये है, ये पहले इसको निकालोगे, उसके बाद फिर जिक्र अस्कार, अल्लाह की मोहब्बत और चीज़ें और
एहसान और मार्फत में तरक्की होगी, पहले कुत्ता तो निकाल के फेंको। इसके लिए शेख की जरूरत होती है, इसके लिए शेख की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर। मौलाना यूनुस पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मजमून लिखा, उन्होंने कहा कि आज हाल ये है कि उम्मत में पानी डालना था दरख्त की जड़ में, लेकिन पानी डाल रहे हैं पत्तों के ऊपर, इधर पानी डाल दिया उधर पानी डाल दिया, जड़ में ही नहीं डालते। तो जितने सारी चीजें कोशिश हो रही है कम्युनिटीज में, ये कर लो ऐसा बना लो वैसा बना लो, लेकिन फायदा हासिल नहीं हो रहा। कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम दरख्त की जड़ में पानी डालना भूल गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो माशरे में तारीकी थी, मुनकरात बुराइयां थी, तरह तरह के गुनाह थे। तो उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला कि ये वाला गुनाह पहले ख़त्म करो, ये वाला ख़त्म करो, इसको ऐसे करो। हजरत ने मेहनत फरमाई ईमान और तकवा पर। तो मौलाना ने फरमाया कि सुप्रीम क्वालिटीज ऑफ द हार्ट ईमान एंड तकवा, इस पर मेहनत करो, बाकी सारी चीज़ें। दरख्त की जड़ में पानी डालो, दरख्त की जड़ में पानी डालो। तो इस्लाह का तरीका ये होता है कि अब आदमी के अंदर गुस्सा है, तकब्बुर है, हसद है, रिया है, शो ऑफ है, ग्रीड है, कैसे निकलेगा? पढ़ लिया, पहले किसी किताब में पढ़ा, जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अरबाईन, उसका तर्जुमा है तबलीग दीन। उसमें हर चीज़ की सिफत का लिखा हुआ है कि इसकी अलामत ये है, इसके सिंबल ये हैं। अगर आपके अंदर है तो पता चला कि आपके अंदर ये बीमारी है। तो पहले किताब में से नोट किया, छोटी सी किताब है, बड़ी नहीं है। और उसके बाद जब अपने अंदर कोई कमी देखी कि ये मालूम होता है कि मेरे अंदर ये मसला है, जैसे सहाबी ने मुकदमा कायम किया था कि मैं मुनाफिक हो गया, आदमी अपने ऊपर मुकदमा कायम करे कि मेरे अंदर ये है और ये है और ये है, फिर लिखे अपने शेख को, अपने मुशीर को, एडवाइज़र को, मेंटर को, और वो किसी से नहीं कहते। औलिया अल्लाह के दिल मखलूक के राजों के अमीन होते हैं, ट्रस्ट वर्दी। उनकी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोग यही मसला पहले पूछ के जा चुके होते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में कोई आके कहे मुझको ये बीमारी है, डॉक्टर घर जाके नहीं बताता आज मेरे क्लिनिक में इतने मरीज आए उनको ये बीमारी थी। और बाज़ दफ़ा तो शुयूख अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से खुद भी गुजरे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, ह्यूमन नेचर है ये, और वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, इसलिए उनसे हाल दिल बयान करने में मसला नहीं होता। आदमी पूछे कि मेरे अंदर ये है, फिर जो मशवरा और इलाज वो बताएं उन पर अमल करें, और फिर शेख दुआ भी करते हैं। तो होता यह है कि हिम्मत, इरादा, इत्तला और इत्तिबा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर सआदत की चाबी और की चौकन्ना और होशियार रहना है। कोई आदमी आजिज है और बेबस है, हालात, वाकयात, शैतान, नफ्स की शरारतें, ऐसा है कि रास्ता नामालूम, आगे अंधेरा और आंखों पर गफलत और जहालत की पट्टी बंधी हुई और नीचे जमीन स्लिपरी है, फिसलन। रास्ता नामालूम, आगे अंधेरा, आंखों पर जहालत और गफलत की पट्टी बंधी हुई और नीचे रास्ता स्लिपरी है और बहुत सारी फोर्सेस चीज़ें जो है वो धकेल रही हैं कि आगे जाओ। इस हाल में है आदमी, उसमें कितनी ज़रूरत होती है। अली रदी अल्लाह अन्हु का फरमान था कि अफसोस, ज़ाद राह कम है, सफ़र लंबा है और रास्ता ख़तरे का है, रास्ता ख़तरे का है। तो अल्लाह के औलिया बन जाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह रह लो, जान लो कि अल्लाह के औलिया, ना उनको कोई खौफ होगा ना गम होगा। अल्लाह पाक अपनी रहमत से, एहसान से, फजल से हमें, आपको, सबको अल्लाह पाक अपने औलिया सिद्दीकीन में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला बुजुर्गों के साथ हमारा हशर फरमा दे। दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اے اللہ آپ کی محبت میں اعمال اور اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بہن بھائی بڑے چھوٹے، مومنین مومنات، صالحین صالحات، اے اللہ جو لوگ علم میں، احسان میں کوشش فرما رہے ہیں،
جہاں جہاں رہتے ہیں، جو جو زبانیں بولتے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی رضا اور خوشی کے لیے ہمیں ان تمام لوگوں سے دینی محبت ہے، اے اللہ ان کی تمام خطائیں گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ سب کی غفلت اور سستی دور فرما دیجیے. اے اللہ شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچا لیجیے. اے اللہ دنیا کے تمام فتنتوں، آفتوں، مصیبتوں اور حادثات سے بچا دیجیے. اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہر وقت اپنی یاد اور ذکر اور شکر اور اچھی نیتیں اور دعاؤں کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ تمام دین سیکھنے سکھانے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیجیے. اے اللہ نفع دینے والا علم سکھا دیجیے. اے اللہ وقت میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جان مال عمر میں اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ پریشانیاں اور گھروں کے معاملات، اے اللہ ساری مشکلات آسان فرما دیجیے. اے اللہ اپنے خزانے ہم پر کھول دیجیے. اے اللہ پوری امت پر کھول دیجیے. اے اللہ وہ صفات عطا فرمائیے جن سے ہم آپ کے محبوب بندے بن جائیں. اے اللہ تقوی اور صدق اور اخلاص اور شرم و حیا اور خدمت کا جذبہ، دعوت کی فکر عطا فرمائیے. اے اللہ انبیاء، صدیقین، صالحین، صحابہ، صحابیات ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. اے اللہ 100% دین چلنے پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ دین پھیلانے والا بنا دیجیے، دین سکھانے والا بنا دیجیے. اے اللہ اولیاء صدیقین کے درجات عطا فرمائیے. اے اللہ صبر اور شکر و احسان اور زبان کی حفاظت اور نظروں اور دل کی حفاظت عطا فرمائیے. اے اللہ پوری مخلوق پر رحم کرنا، خدمت کرنا اور صدقات کرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہر بری بات اور صفت ہمارے دلوں سے دور کر دیجیے. اے اللہ عجب اور کبر اور فخر و غرور اور لوگوں سے تعریف چاہنا اور حکومت چاہنا، اے اللہ برے جذبے ہمارے اندر سے دور فرما دیجیے. اے اللہ حسد اور حب جاہ دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائیے، ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھیے. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.